मेरे परमेश्वर, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से मिली है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है।
श्रोता, आपके आत्मिक जीवन के विकास के लिए मैं सोनाली एक बार फिर से कार्यक्रम महिमा के वचन लेकर उपस्थित हूँ और आपका स्वागत करती हूँ। इस मधुर गीत से आइए हम कार्यक्रम का आरंभ करें। श्रोता, विज्ञान की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ से हमें हर दिन कुछ ना कुछ नई जानकारी मिलती है। वैज्ञानिक कभी रोबोट बनाते हैं तो कभी अद्भुत चीज़ों का आविष्कार करते हैं। जी हाँ, आज मैं ऐसी ही कुछ नई चीज़ों से आपको अवगत कराने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं एक ऐसे पेन के विषय में बताना चाहूँगी जो किताब को पढ़कर बोलने की क्षमता रखता है, या कहें किताब को पढ़कर सुना सकता है। क्यों, आश्चर्य हुआ ना यह सुनकर? लेकिन हाँ, भारत ने एक ऐसा पेन तैयार किया है जो किताब को पढ़कर सुनाएगा। जी हाँ, जिस शब्द पर इसे रखा जाता है यह उसे बोलकर सुनाता है। दरअसल आदर्श नाम की कंपनी द्वारा तैयार किए गए इस पेन को मल्टीमीडिया प्रिंट रीडर या MPR कहते हैं। किंतु हाँ श्रोता, यह पेन सभी किताब पर रखने से नहीं बोलता, क्योंकि इसके लिए विशेष रूप से MPR रेडी बुक्स तैयार की जा रही हैं, जिसमें किताब की ऑडियो फाइल बना ली जाती है और किताब पर दो आयामी या 2D कोड लगा दिया जाता है। फिर ऑडियो फाइल को पेन में लोड करने के बाद जैसे ही इसे किताब पर लगे कोड के सामने लाते हैं तो पेन क्रियाशील हो जाता है और शब्दों को पहचान कर बोलने लगता है। भारत में फिलहाल 50 किताबें MPR फॉर्मेट में आई हैं और दुनिया भर में अभी ऐसी 500 किताबें उपलब्ध हैं। मैं आपको यह भी बता दूं श्रोता कि इस बोलने वाले पेन में एक इनबिल्ट स्पीकर, कैमरा और 2 GB का मेमोरी कार्ड है। जिस किताब को पेन की मदद से पढ़ा जाना है उसे प्रकाशक की साइट से पेन में डाउनलोड करना होगा, और तो और जल्दी ही इस पेन के ज़्यादा मेमोरी वाले मॉडल के बाज़ार में आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही श्रोता, मैं आपको एक ऐसे जहाज के विषय बताना चाहूँगी जो आसमान में तो उड़ता ही है बल्कि इसके साथ वह पानी पर भी तैरता है। जी हाँ, सी प्लेन नाम का यह जहाज अपने नाम के अनुसार हवा में तो उड़ेगा ही, साथ ही साथ समुद्र में उतरकर नाव की तरह तैरेगा भी। मालदीव, कनाडा और दूसरे अन्य यूरोपीय देशों के बाद इसे भारत में लाने की तैयारी की जा रही है और इसकी जिम्मेवारी सरकारी हेलीकॉप्टर कंपनी पवन हंस ने ली है। 8 से 16 सीट वाले इस सी प्लेन का स्थानीय लोग और पर्यटक एक द्वीप से दूसरे द्वीप जाने के लिए और छोटी छोटी उड़ानों के लिए भी कर सकेंगे। तो है ना ये अचरज की बात। इसी तरह की एक और जानकारी की बात मैं आपको बताना चाहूँगी, वह ये है कि फॉर्म की कार चलेगी पानी पर भी। जी हाँ, एक अमेरिकी नागरिक लॉन बलार्ड ने फॉर्म से एक कार बनाया है और इस विशेष कार का नाम है स्पाइरा। आपको मैं यह बता दूं कि 500 पाउंड वजन यानी लगभग 250 किलोग्राम वजन वाले इस कार में कावासाकी मोटरसाइकिल का इंजन लगाया गया है और हाँ, इसमें 2 व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं। और तो और इसमें सबसे मुख्य बात तो यह है कि यह कार पानी के ऊपर भी तैर सकती है। इस कार को बनाने वाले का कहना है कि उनकी इस कार से सड़क हादसों में होने वाली मौतें भी कम होंगी, क्योंकि फॉर्म की कार से टकराने पर जान जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इस कार को तैयार करने में 2 साल लगे और $2,00,000 यानी लगभग 90 लाख रुपए खर्च हुए। एक और रोचक बात बताना चाहूँगी श्रोता, आपने रोबोट का नाम तो सुना ही होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि रोबोट के नाम से आप परिचित तो है ना? जी हाँ, यह भी विज्ञान की ही देन है। वैज्ञानिक कहते हैं रोबोट ये काम करेगा, वो काम करेगा, वगैरह वगैरह। अब देखिए ना, वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो खाना भी गर्म करेगा। है ना आश्चर्य की बात। मैं आपको बता दूं कि दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने चलने फिरने वाला एक ऐसा रोबोट बना लिया है जो घर की साफ सफाई, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना और यहाँ तक कि माइक्रोवेव में खाना भी गर्म कर सकता है। इसके साथ ही माहरू जेड नाम का यह रोबोट इंसानों की तरह आसानी से गर्दन घुमा सकता है और अपने पैरों को मोड़ सकता है। उसकी उंगलियां 5 की जगह 6 हैं। उसकी सबसे बड़ी विशेषता पता है क्या है? यही कि उसकी आँखें 3D हैं, जिसके कारण वह किसी भी वस्तु को अच्छी तरह पहचान सकता है और यह तय कर सकता है कि उसे दिया जाने वाला कौन सा काम वह पूरा कर रहा है और किसे करना बाकी है। पिछले दिनों कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्थित कॉग्निटिव रोबोट सेंटर में इसका सफल प्रयोग किया गया। तो आशा है श्रोता, इन बातों से आज आपने कुछ बहुत विज्ञान की जानकारी अवश्य प्राप्त की होगी।
जीवन में जब मेरे आंधी है चलती, ईशु की शरण लेता आत्मा मेरी संतुष्ट होती, प्रार्थना जब मैं करता हूँ।
जीवन में जब मेरे आंधी है चलते, ईशु की शरण लेती हूँ, आत्मा मेरी संतुष्ट होती, प्रार्थना जब मैं करती हूँ।
मैं मसीह में जयवंत हूँ,
मैं मसीह में जयवंत हूँ,
मैं मसीह में जयवंत हूँ,
मैं यीशु में जयवंत हूँ।
जब मेरे आंधी है चलती, यीशु की शरण लेता आत्मा मेरी संतुष्ट होती, प्रार्थना जब मैं करता हूँ।
जीवन में जब मेरे आंधी है चलती, यीशु की शरण लेती हूँ, आत्मा होती, प्रार्थना जब मैं करती हूँ।
जीवन में जब मेरे आंधी है चलती, यीशु की शरण लेता हूँ, आत्मा मेरी संतुष्ट होती, प्रार्थना जब मैं करता हूँ।
जीवन में जब मेरे आंधी है चलती, यीशु की शरण लेती हूँ, आत्मा मेरी संतुष्ट होती, प्रार्थना जब
मसीह में जयवंत हूँ,
मैं मसीह में जयवंत हूँ,
मैं मसीह में जयवंत हूँ,
मैं यीशु में जयवंत हूँ।
मैं मसीह में जयवंत हूँ,
मैं मसीह में जयवंत हूँ,
मैं मसीह में हूँ, मैं यीशु में जयवंत हूँ।
हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आश्चर्यकर्म क्यों आवश्यक है। हम जरा इस बात पर विचार करें, परमेश्वर सर्वसामर्थी है, उसने आकाश और पृथ्वी को अपने वचन से बनाया, आदम के नतनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। लाल समुद्र को उसने दो भागों में बांटकर इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला, अपने पुत्र को इस दुनिया में मानव जाति को पाप से छुड़ाने के लिए भेजा कि वह उनके लिए प्रायश्चितकारी क्रूस मृत्यु के द्वारा बलिदान हो, उसने उसे मृतकों में से जिला उठाया और शैतान को हराया। वह दुनिया के लोगों को प्रभु यीशु के द्वारा अपने पास बुलाता है कि वे उसके साथ अपना संबंध ठीक कर लें और उसकी संतान बन जाएं। आज भी वह वही परमेश्वर है, उसने अपने प्रेम करने वालों के लिए आश्चर्यकर्म तैयार किया है कि वह उन्हें उनके जीवन में पूरा करे। उसके चुने हुए लोग होने के कारण उसने हमें अधिकार दिया है कि हम भी उन अद्भुत कार्यों को करें जिनकी प्रतिज्ञा उसने बाइबल में की है। हम आश्चर्यकर्म करने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु ने स्वर्गारोहण से पहले अपने चेलों को आज्ञा दी थी, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उंडेलूँगा, परंतु जब तक तुम स्वर्गीय सामर्थ से परिपूर्ण न हो जाओ इसी नगर में ठहरे रहना। लूका अध्याय 24 पद 49, प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 4, 5 और 8 में उसने अपने चेलों से कहा, यरूशलेम को न छोड़ना वरन पिता की उस प्रतिज्ञा के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करना जिसे तुमने मुझसे सुना है। यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया, परंतु अब से थोड़े दिनों के पश्चात तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में, यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। सेवकाई में आश्चर्यकर्म के बारे में बाइबल मरकुस अध्याय 16 पद 19 और 20 में कहती है, अतः जब प्रभु यीशु उनसे बातें कर चुका तो वह स्वर्ग में उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और उन्होंने जाकर सब जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ साथ काम करता रहा और वचन को उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे दृढ़ करता रहा। प्रेरितों के काम अध्याय 4 पद 29 से लेकर 31 में लिखा है, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरे वचन को पूर्ण निर्भयता से सुनाए। तू चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा और आश्चर्यकर्म और चिन्ह तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम के द्वारा किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे एकत्रित थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन निर्भीकता से सुनाने लगे। इस घटना में उन विश्वासियों ने परमेश्वर से निवेदन किया कि वह उनको वचन का प्रचार चिन्ह और चमत्कार के साथ करने की सामर्थ्य प्रदान करे। उन्होंने परमेश्वर से यह नहीं मांगा कि संसार में अच्छे कार्य करने के लिए, बढ़िया उपदेश देने के लिए उनकी सहायता करे, बल्कि उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि वह उन्हें वैसी सेवकाई दे जिसमें वे परमेश्वर की भलाई और उसके प्रेम का संदेश लोगों के बीच रोगों से चंगाई, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा और अद्भुत कार्यों को करने के द्वारा कर सकें। वे सेवकाई में आश्चर्यकर्म करने की सामर्थ्य की मांग कर रहे थे। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे कार्यों में अपनी सामर्थ्य प्रकट करता है। हमारा कोई भी भला कार्य परमेश्वर के आश्चर्यकर्म के बराबर नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा ही मसीह की देह अर्थात कलीसिया या चर्च सुसमाचार के प्रचार और जरूरतमंदों की सहायता सामर्थी और प्रभावशाली ढंग से कर सकती है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना अध्याय 14 पद 12 से 14 में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है वे कार्य जो मैं करता हूँ वह भी करेगा और उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही करूँगा कि पुत्र में पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। आप आश्चर्यकर्म करने वाली कलीसिया के अंग हैं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा उन बड़े बड़े कार्यों को करेगा जो प्रभु यीशु ने किए और उनसे भी बड़े बड़े कार्य करेंगे। आप प्रभु यीशु के नाम से बीमारों को चंगा कर सकते हैं, उन लोगों को छुटकारा का संदेश दे सकते हैं जो पाप और बुराई के बंधन में जकड़े हुए हैं। आप प्रभु यीशु के नाम से दुष्टात्माओं द्वारा सताए जाने वाले लोगों को आज़ाद कर सकते हैं, उनको बंधवाई से छुड़ा सकते हैं, भूखों को खिला सकते हैं, ज़रूरतमंदों की सहायता कर सकते हैं, मुर्दों को जिला सकते हैं और उनसे भी बड़े कार्य कर सकते हैं। ये सब कार्य आप अपनी शक्ति या सामर्थ्य के द्वारा नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा कर सकते हैं। इसके लिए आपको पवित्र आत्मा को आमंत्रित करना होगा और अपने जीवन तथा सेवकाई में काम करने देना होगा। अब अगला प्रश्न है, आश्चर्यकर्म कैसे प्राप्त करें? क्या आप भी परमेश्वर के आश्चर्यकर्म को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कार्यक्षेत्र में या अपने व्यवसाय या अपने प्रियजनों के जीवनों में देखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो प्रभु यीशु के पहाड़ी उपदेश के इस धन्य वचन को ध्यान से पढ़ें जिसमें लिखा है, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती अध्याय 5:6। आश्चर्यकर्म प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर गहरी लालसा या भूख होनी चाहिए। यह गहरी लालसा या भूख किसी व्यक्ति के अंदर तब उत्पन्न होती है जब वह चारों ओर से निराशा और समस्याओं से घिरा होता है और उसका हृदय पूरी तरह से टूटा हुआ होता है। बुरी परिस्थितियों के उस भंवर से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता उसके सामने नहीं होता। उस समय उसकी स्थिति ज्वालामुखी के उबलते लावे के समान होती है जो पृथ्वी की सतह के कुछ फीट नीचे धरती में, धरती के परतों के नीचे दबा होता है। वह धरती को फाड़कर बाहर आना चाहता है मगर आ नहीं पाता। जब दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वह रोकने वाली भूमि की परतों को फाड़कर बाहर निकलने लगता है। 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी से पीड़ित उस स्त्री को स्मरण करें जो व्यवस्था के अनुसार अशुद्ध थी और लोगों की भीड़ में शामिल होना उसके लिए वर्जित था। अपनी लंबी बीमारी के कारण वह बहुत दुखी थी। उसने अपने इलाज में सारा धन गंवा दिया था। उसके पास अब कोई आशा नहीं थी मगर उसका हृदय विश्वास से भरा था। वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को स्पर्श कर लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। मत्ती अध्याय 9:21 में इसका वर्णन है। उसे लोगों की भीड़ या व्यवस्था के दंड का कोई भय नहीं था। उसके सब्र का बांध टूट चुका था। वह जैसा विश्वास करती थी वैसा ही उसने किया और परमेश्वर के आश्चर्यकर्म को अपने जीवन में देखा। उसने चंगाई को पा लिया। उसे अपनी लंबी रोग से छुटकारा मिल गया। आइए अब मरकुस अध्याय 10:46-52 में वर्णित अंधे बरतिमाई की घटना पर नज़र डालें। उसकी स्थिति भी उस स्त्री की तरह थी। जब यीशु नासरी रास्ते से गुजर रहा था तो अंधा बरतिमाई पुकार कर कहने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लोगों ने उसे डांट कर कहा कि वह चुप रहे, परंतु वह और ज़ोर से चिल्लाने लगा, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बाइबल बताती है कि उसकी पुकार को सुनकर प्रभु यीशु रुक गया और कहा, उसे बुलाओ। जरा सोचिए, परमेश्वर का पुत्र जिसके द्वारा और जिसके लिए स्वर्ग और पृथ्वी की सब वस्तुओं की सृष्टि हुई, जिसका वर्णन कुलुसियों की पत्री अध्याय 1:16 में किया गया है, वह अंधे बरतिमाई के टूटे हृदय की पुकार को सुनकर रुक गया और लोगों से कहा, उसे बुलाओ। प्रभु यीशु ने उसकी पुकार को सुनकर उसे चंगा किया। अंधे बरतिमाई ने विश्वास के द्वारा आश्चर्यकर्म को पा लिया। यदि आप सीखना चाहते हैं कि आपका जीवन भी आश्चर्यकर्मों और गवाहियों से भरा हो तो आप बाइबल में प्रभु यीशु और उसके चेलों के जीवन का अध्ययन करें। गहराई से विचार करें कि किस प्रकार वे जीते थे और किस प्रकार उनके जीवन में आश्चर्यकर्म होते थे। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा से निवेदन करें कि उसी तरह आपके जीवन में भी वह कार्य करे। प्रार्थना में समय व्यतीत करें, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनें और उसके अनुसार कार्य करें। आप किसी अनुभवी आत्मिक शिक्षक या अगुवे के द्वारा भी इसकी शिक्षा ले सकते हैं। एक नए जीवन की शुरुआत करें जिसमें चिन्ह और चमत्कार एक सामान्य बात होगी। परमेश्वर आपकी सहायता करे।
चलूंगा, बाहों से अपने आने चलेगा प्रभु मेरे।
हमें आशा है प्रिय श्रोता कि आज के संदेश के द्वारा आपको अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त हुआ होगा। हम आपके आत्मिक जीवन के विकास के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे। कृपया हमसे संपर्क बनाए रखें। हमारा पता है महिमा के वचन, पोस्ट बॉक्स नंबर 205, रांची 834001, झारखंड। पता एक बार पुनः मिला लें, महिमा के वचन, पोस्ट बॉक्स नंबर 205, रांची 834001, झारखंड। हमसे सीधे बातचीत करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लें, 09835983759। नंबर फिर से मिला लें, 09835983759। अब हमें कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दें। अगला कार्यक्रम लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सोनाली का नमस्कार।